वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने वाले वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने वाले आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने वाले कैसे बतलाए वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने वाले
ओम शांति। बाबा ने हम सबको अपने वरदानों से इतना सजा रहे हैं जिसके कारणों से हमें कहाँ कहाँ से ढूंढ निकाला, कैसे कैसे दुनिया से कैसे कैसे संस्कार वालों को अपना बना करके इतने बड़े विश्व परिवर्तन के जो कार्य में हम सबको निमित्त बना रहे। इसीलिए हम सब कहते हैं ये वरदानों का युग है, वरदानों से हम पलते हैं, जागते हैं, सोते हैं, उड़ते हैं, तो वरदानों से ही हमारा पालन पोषण हो रहा है, हरण भरण हो रहा है, लालन पालन हो रहा है। इसीलिए बाबा हम सबके ऊपर बहुत बड़ी उम्मीद रखे हुए, जिसके कारण से विश्व परिवर्तन का जो इतना बड़ा महान कार्य कल पहले के मुआफिक हुआ ही पड़ा है। तो बाबा तो हम सबको भरोसा इसीलिए रखते हैं क्योंकि कलप कलप की ये विजयी रतन आत्माएं। लेकिन कभी कभी हम लोग अपने ऊपर भरोसा रखने के लिए इतना समर्थवान नहीं होते क्योंकि चारों तरफ से माया घिर रही होती है, अनेक प्रकार की समस्या मुसीबतें होती है। उस समय लगता है कि हम विजयी बन सकेंगे या क्या होगा, भविष्य का लोकेशन स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इसीलिए हम सबको बाबा तो विश्वास रख करके हम सबके ऊपर इतनी बड़ी बातें सुनाते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, शुरू शुरू में तो बहुत होता ही है, तो आगे बढ़ने के बाद में भी बहुत सारी बातें आती है, तो उस समय वरदानी विस्मृत हो जाता है। इसीलिए जब तक वरदान स्मृति में नहीं आते हैं, नहीं लाते हैं, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं, तो वरदान का कोई औचित्य नहीं रहता है। जब तक हम स्मृति स्वरूप हो जाते हैं तभी वरदान काम में आने लगता है। तो उस समय भी कहा था कि ब्राह्मणों का श्वास ही स्मृति है। तो वरदानी मुहूर्त बनने की बाबा ने अनेक मुरली में अनेक विधियां बताई है, जिसके कारण से हम हर दिन उसका फॉलो करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं और हर दिन अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं। क्योंकि पूरा आधा कल्प तो हम लोगों ने दूसरों की तरफ भी ध्यान दिया, इसलिए आज बार बार हमारा ध्यान न चाहते हुए भी पुरानी आदतों की ओर मजबूर हो जाता है। लेकिन बाबा तो हम सबको वही नारा दिया है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। दुनिया में तो दूसरों को ही दिखाते रहते हैं, वो ऐसा है, ये ऐसा है, फलाना ऐसा है, ढिकलाना ऐसा है, लेकिन स्वयं के ऊपर नजर नहीं होता है। आज भी बाबा ने बोला कि नेताओं को बुलाते हैं, मंत्रियों को बुलाते हैं, कहते हैं कि ये ज्ञान तो बहुत अच्छा है, सबको करना चाहिए। तो उसको कहते हैं तुम करना शुरू करो, आप करना शुरू करो, कहते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। इसलिए दूसरों को दिखाना, दूसरों को कहना तो बहुत ईजी होता है, लेकिन स्वयं के ऊपर जब हम निगाहें रखते हैं तो कितनी बुराइयां और असच्चता अंदर भरी हुई है, वो कभी कभी तो बहुत ज्यादा अनुभव होता है, कभी कभी कम होता है। इसलिए हम सबकी लड़ाई बिना शस्त्र और अस्त्र से, जहां अपने पास न हथियार है देखने में, न गोला बारूद है, न बम हाथ में, लेकिन लड़ाई बिना अस्त्र और बिना शस्त्र से अपने ऊपर ही है। इसीलिए बाबा ने हम सबको ज्ञान का अस्त्र और शस्त्र दिए हैं, जिसके बल से हम सब अपने ऊपर हर दिन नजर रखते हैं और अपने ऊपर ही हमारी लड़ाई है। हमारे अवचेतन के अंदर जो सुरंग बना के बैठे हुए आतंकी मन के अंदर से बाहर आते रहते, इसीलिए आज तक जहां भी देखा गया है, जिसको भी देखा गया है, दूसरों की वजह से लोग कम दुखी हैं, लेकिन अपने कारण से व्यक्ति ज्यादा दुखी है आज। इसीलिए सब कुछ है लेकिन अपने मन में शांति नहीं है, कोई न कोई बातें टपक जाती है बुद्धि में, तो मजा ही किरकिरा कर देता है। इसीलिए हम आज ऐसे युद्ध के मैदान पर खड़े हैं। कुरुक्षेत्र, कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र की बातें आती है, तो सभी लोगों ने धर्म की बातें तो बीच में चढ़बड़ के बहुत बड़ी बातें बताए हैं, लेकिन धर्म का अर्थ धारणा होता है। तो धारणा का मतलब होता है कि परिवर्तन युक्त जीवन। परिवर्तन करने के लिए हम सबके पास में, पहले हम दूसरों को परिवर्तन में जो ध्यान देते थे, लेकिन ताकत किसी के पास में नहीं था, लेकिन अभी बाबा ने हम सबको वो ताकत दी है, वो एनर्जी हम सबको भरा है कि हम सब स्वयं को परिवर्तन करने में लगे हुए। तो स्वयं का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। और कहते हैं कि वरदानों में मेहनत नहीं लगता है, लेकिन वरदानों में मेहनत तो नहीं लगता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। इसीलिए भक्ति मार्ग में तो वरदानों का महत्व इसलिए है क्योंकि लास्ट में भगवान का दर्शन होता है, उसके बाद में उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ तो भगवान का दर्शन आए दिन ही शुरू दिन ही हो जाता है और हम सबको अपने ऊपर ही फोकस करते हैं बाबा, और हम सबको हर दिन कुछ न कुछ ऐसी बातें बता करके वरदानी मुहूर्त, संपूर्ण मुहूर्त, साक्षात्कार मुहूर्त, साक्षात मुहूर्त बनानी चाहते हैं बाबा, संसार के आगे दर्पण बनाने चाहते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं इस धरती का रचयिता, जगत नियंता है, तो वो धरती पर आते हैं तो अपने बच्चों के द्वारा अपने बच्चों को सैंपल बनाते, शोकेस की शोपीस बनाते हैं। इसीलिए बाबा हम सबको दुनिया के आगे प्रस्तुत करना चाहते हैं कि मेरी पढ़ाई पढ़ने वाले इन बच्चों को देखो, जिनके नयनों से, हाथों से, दृष्टि से, वृत्ति से विश्व कैसे परिवर्तन हो गई है, और ये आत्माएं अपने आप को परिवर्तन करके संसार के आगे कैसे सैंपल बन गए। संसार की विषम परिस्थिति के बीच में भी रह करके इन्होंने अपनी त्याग तपस्या और बलिदान के आधार से अपने आप को कैसे चेंज किया है बाबा, इसीलिए हम सबको वरदानों से हर दिन झोली भरते रहते हैं। लेकिन झोली तो हम लोग लेके जाते नहीं है बाबा के कमरे में मेडिटेशन हॉल एसटी हॉल में, हम सबका बुद्धि रूपी झोली बाबा भरते हैं और उसी झोली में जो चीज ठहर जाती है वो दिन भर हम चिंतन करके मंथन करके फिर अंदर में डाल करके उसको अपना बनाते हैं। इसीलिए हम सब बाबा से सिलेक्टेड आत्माएं कहाँ कहाँ से, जैसे कि हम लोग ने गीत में भी सुना, जहाँ कोई आस उम्मीद नहीं थी ऐसी आत्माओं को बाबा ने अपना बना करके विश्वास और भरोसा जताया है। इसलिए हम सब वरदानों के खान हम सबको मिल गया है। तो वरदानों को कहते हैं कि वरदान में मेहनत तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि शुभ भावना शुभ कामना भरी हुई होती है और उसके कारण से मेहनत नहीं लगता है, करना तो सबको पड़ेगा। जैसे कोई गरीब व्यक्ति होता है, यहाँ से आबू रोड तक जाना होता है तो उसके पास में अगर चल के जाने के लिए ही सामर्थ्य होगा तो पैदल जाना पड़ेगा, और जो थोड़ा सा समर्थवान है वो साइकिल खरीद लेगा, अगर उससे भी ज्यादा समर्थवान बन जाता है तो सरकारी बस में चढ़ के जाता है, जीप में चढ़ के जाता है, और उससे भी ज्यादा मालामाल होगा तो अपने गाड़ी में बैठ करके शांति वन की सफर करता है। शांति वन वहां तो पहुंचना ही पड़ता है लेकिन वहां तो पहुंचना ही पड़ता है, लेकिन मेहनत किसको किस बातों में ज्यादा, किसको किस बातों में ज्यादा। जिसने पहले से अपनी स्थिति अवस्था और जीवन में समय शक्ति संकल्प एनर्जी को बर्बाद नहीं किए हैं उनको हर चीज में सहज हो जाएगा, और जिन्होंने बचपन में तो कुछ किया ही नहीं तो फिर अपना जीवन जैसा है ऐसे चलानी पड़ेगी, स्वीकारना ही पड़ेगा। इसलिए वरदानों का सपोर्ट ऐसा कहते हैं कि वरदान ये चीज है, जैसे कि कोई साइकिल रैली में जा रहे है, जैसे सिरोही की तरफ जाना है तो पश्चिम के तरफ से हवा के झोंके आ रहे हैं तो साइकिल चलाना कितना इजी हो जाएगा। पुरुषार्थ अर्थात जाना सिरोही है, हवा भी सिरोही की तरफ से आ रहा है तो ऐसे चकमा देगा, गिराने का चक्कर भी हो जाता है। इसीलिए वरदानों में मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा होता है। इसलिए वरदानी मूर्त आत्माएं अर्थात प्रैक्टिकल जीवन द्वारा सबको दिखाई दे, सब समझे सब जाने कि इन्होंने कुछ पाया है तो कुछ पाने की हम प्रूफ देना चाहते हैं। इसलिए हम सब वरदानों से तो पल रहे हैं, तो पलने का मतलब ये है कि आगे जाकर के हम सबको भी सबूत देना है। तो सबूत देने की जब वक्त आएगा, बाबा ने बोला कि अंत में जाकर के तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी, तुम्हारे आगे हजारों की तादाद में आत्माएं क्यों लगेगी, उस समय ज्ञान सुनाने का वक्त नहीं होगा, एक सेकंड की दृष्टि के द्वारा उन सबको दृष्टि से निहाल करनी पड़ेगी और उन सबको मुक्ति के लिए, है ना, एक सेकंड की झलक पा करके वो मुक्ति के लिए रवाना होंगे। तो उन सभी आत्माओं के लिए हम सब पुरुषार्थ अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन बाबा आगे जाकर के भक्तों के लिए भी करा रहा है और सभी आत्माओं के लिए भी करा रहा है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे द्वार में जब तक वो नहीं आएंगे मुक्ति धाम जाने वाला पासपोर्ट अथवा ठप्पा नहीं लगने वाली है तो इतना बड़ा टाइटल और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी जवाबदेही बनाई हम सबको बाबा ने। इसीलिए उस दिन भी सुशील भाई सुना रहे थे कि पूरा मुरली साक्षात भगवान है तो हम सब ने किस आधार से इस चीज को ग्रहण किया है और इसको हमने किस रूप से समझा है, उसके आधार से ही हम अपने जीवन को मूल्यवान बनाते हैं और मूल्यांकन कर सकते हैं। नहीं तो मूल्यवान बनाने के लिए जब तक उसका मूल्य हम नहीं समझेंगे तो मूल्यवान कैसे बनेंगे। तो मूल्यवान बनने के लिए हम सब आत्माएं अपने मूल्य को समझे सबसे पहले, क्योंकि बाबा तो हम सबको इतनी सारी चीजें देते हैं कि एक एक चीज की अगर गहराई में उतर जाए तो ब्राह्मण को तो इधर उधर देखने के लिए फुर्सत कहाँ मिलेगा। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि सबसे मूल्यवान तो समय होता है, लेकिन सबसे ज्यादा समय को ही वेस्ट करते हैं हम सब। इसीलिए समय को समझना। कहते हैं कि बच्चा जब पैदा हो जाता है तो एक डेढ़ साल दो साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है उसको ये सीखने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। तो इसीलिए शब्दों के द्वारा ही कई सारे द्वंद्व लड़ाई झगड़े होते हैं। इसीलिए शब्दों में बाबू कहते हैं कि वरदानी मूर्त आत्माओं के शब्द कितने मूल्यवान होने चाहिए, वरदानी बोल होनी चाहिए। तो जितना ज्यादा हम बोलते हैं तो शब्दों में ताकत कम होती है, तो फिर शब्दों में ताकत कम होने का प्रूफ यह है कि हमने उस स्थिति और उस अवस्था को नहीं बनाए। तो इसलिए दो प्रकार के जो पॉइंट निकाले थे, एक प्रकार का जो वरदान का जो लिस्ट बने हुए हैं वो देखते ही जो शक्तिशाली जो पॉइंट है जो हम चलते फिरते कहीं भी लगा रहता है, हम पढ़ते हैं तो तुरंत हमको संजीवनी बूटी मिल जाती है और हम बेहोशी की हालत में भी होश में आ जाते हैं। वो 25 पॉइंट है और जो प्रिंट करके जो रखा है वो 20 पॉइंट है। तो 25 पॉइंट का ये थोड़ा सा हमने स्मृति में रखने की अभ्यास की थी। तो उससे पहले हमने वो जो 25 पॉइंट निकाले थे, हम सब कैसे पालना लेते हैं, वरदानी मूर्त बनने के लिए हमको किन किन बातों का सपोर्ट मिला है और मिल रहा है। तो इसमें हम सबको सबसे पहले तो श्रीमत का सपोर्ट मिला है और श्रीमत के द्वारा हम हर दिन अपने आप को किस दिशा में ढालना चाहिए, किस गति से चलना चाहिए, आज क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए, कितनी बातों में फोकस देनी चाहिए, इस बारे हर दिन बाबा हमको मुरली के द्वारा श्रीमत अथवा डायरेक्शन देते हैं। तो दूसरी पॉइंट है कि जैसे कि मर्यादाओं का जो मर्यादाएं द्वारा हमारी पालना हो रही है, हमारी जैसी जो मर्यादाएं जितना स्ट्रांग है संसार में किसी के पास में इस प्रकार की मर्यादाएं नहीं है। तो मर्यादाएं हमारा फाउंडेशन है और मर्यादाएं हमारी इतनी मजबूत और इतना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि हमको सर्व प्राप्तियों के आधार से मिला हुआ है। तो जहां प्राप्तियां होती है तो कोई चीज मेहनत नहीं लगता है। तो मर्यादाएं ब्राह्मणों की इतना लगता है कि हम सबने इसको प्रैक्टिकल में किए, इसलिए हमारी मर्यादाओं को देखकर के दुनिया वाले भी चकित हो जाते हैं। कई सारी ऐसी बातें हैं जो हमारा खान पान से लेकर के हमारा उठना बैठना सोना जागना, जो अमृत वेले से लेकर रात तक बाबा ने जो मर्यादाएं बताई है वो मर्यादाएं हम सबको इतना पटरी पर लाके देता है जिसके कारण से एक सेकेंड भी हमारा इधर उधर होने का चांस नहीं होता है। तीसरे में एक ही पूर्वजों के द्वारा हम सबको पालना मिल रही है, पूर्वज आत्माओं के द्वारा जिन्होंने पूरा तप करके अपने जीवन को इतना महान बनाए हैं, वो आत्माओं का सपोर्ट है हम सबको। चौथा में एडवांस पार्टियों के द्वारा भी हम सबकी पालना हो रही है और उन्होंने दिखाए गए जो मार्गदर्शन करके गए हैं उस चीज आज वो यहाँ हमारे आगे मौजूद नहीं है लेकिन स्मृति तो आती रहती है ना, उन्होंने ऐसा करके गए हैं। वो भी तो आत्मा को कितना ताकत भरता है, कितना एनर्जी प्रदान करता है। तो फिर हम सबको एडवांस पार्टियों के द्वारा भी हम सबको वरदानी मूर्त बनने में सपोर्ट मिल रही है। उसके बाद में दुआओं के आधार से हम पल रहे हैं, सर्वात्माओं की दुआएं आशीर्वाद के द्वारा हम पल रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण संसार में ये एक सबके लिए रहता है कि बहुत सारे बच्चे बाबा के बन जाए, जल्दी जल्दी बन जाए, जहां नया जगह खुलता है सबके वाइब्रेशन सकाश वहां हम देते हैं, तो इसका मतलब हम सबको यह है कि सभी आत्माएं आशीर्वाद उन सबको मिले। तो सिर में हाथ रखने की बात नहीं है, लेकिन हम अपनी भावनाओं से उन सबको इस प्रकार की बातें पहुंचाते हैं। तो उसके बाद में हम सबको सोमानों के द्वारा पालना हो रही है, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए सोमान का कितना बड़ा महत्व बताया बाबा ने। उसके बाद में ज्ञान के द्वारा पालना हो रही है, गुणों के द्वारा पालना हो रही है, उसके बाद में शक्तियों के द्वारा पालना हो रही है, और चार धाम के द्वारा पालना हो रही है हम सबकी 10 नंबर में क्योंकि मधुबन में तो चार धाम तो है ही है। अब ब्राह्मण आज क्यों इतना तड़प रहे कि मधुबन जाने के लिए, सब पूछते हैं कि क्या खबर है, क्या हो रहा है, वहां का गतिविधि क्या है, सबका नजर है। तो कोई तन से नहीं पहुंच पाते हैं तो मन से पहुंचते हैं, और चार धाम के लिए तो हम सब बीच में कई बातें सुना चुके हैं, इसीलिए चार धाम मन से भी करते हैं। बाबा ने तो मन से बोला है, उस समय 2005 में जब इंदौर ग्रुप से बाबा मिले थे चार धाम का महत्व, तो हम चार धाम के द्वारा भी हमारी पालना हो रही है, वरदान हम सब ले रहे हैं। तो फिर 11 में हमारे जो दादा दादी दादी दादा दादाएं और दीदियों के द्वारा पालना हो रही है हमारी। तो 12 में ब्रह्मा भोजन के द्वारा पालना हो रही है, जो भी ब्राह्मण जहां भी रहते हैं बाबा की याद में भोजन बनाते और खाते हैं तो उसको ब्रह्मा भोजन ही कहा जाता है। और कभी कभी पार्टिकुलर कहीं ब्रह्मा भोजन का प्रोग्राम होता है, वहां तो सबका शुभ भावना सबका मिलना जुलना तो होते ही है, ब्रह्मा भोजन से पल रहे। तो वरदानी मूरत बनने में इसका भी कितना बड़ा सपोर्ट है, और सर्व का शुभ भावना और शुभकामनाओं से हम वरदानी मूरत बन रहे, वरदानी मूरत। तो 14 में निकाले कि संदेशों के द्वारा पालना हो रही है हम सब संदेश के द्वारा भी पल रहे हैं, क्योंकि पहले पहले तो बाबा वो रूल नहीं था, तो गुरुवार के दिन हर एक आत्मा इस संदेश लेने टांस में जाती थी और सबको बाबा एक साथ अनुभव कराते थे, लेकिन आगे जाकर के नुकसान होने की बातें आ गई तो बाबा ने बंद करा दिया। तो फिर 15 में क्लास चिंतन के द्वारा क्लासेस जो हम सुनते हैं, आज नए नए पॉइंट अच्छी पॉइंट जो हम सबको काम में आता है, तो इसके द्वारा भी हमारी पालना हो रही है, वाइब्रेशन और नैनो द्वारा पालना हो रही है हम सबको, वाइब्रेशन और नैनो के द्वारा पालना हो रही है। 17 में दिनचर्या के द्वारा पालना हो रही है हमारी, पूरा पटरी पर ट्रेन चल रही है, तो हम समझते हैं कि हमारी उन्नति और प्रगति हो रही है। पटरी से कहीं उतर गए तो हमारी उन्नति प्रगति में कहीं न कहीं खूट आ गई है, और कहीं न कहीं माया ने ओवरलोड कर दिया है तो आगे बढ़ने में हम सबको थोड़ा सा ढिलाई हो रही है। इसलिए 18 में सर्व संबंधों से पालना हो रही है, बाबा से हम सर्व संबंध का अनुभव करते हैं तो उसके द्वारा पालना हो रही है। 19 में सूक्ष्म लोक और परम धाम से पालना हो रही है हम सबकी, जब हम परम धाम पहुंच जाते हैं तो हम कितना शक्तिशाली तरोताजा हो जाते हैं। सूक्ष्म लोक में बाबा के साथ हम शेयर करते हैं तो हम सबको कितना आनंद आता है। तो हम सबको अभी 20 नंबर में साकारी आकारी निराकारी पालना मिल रही है। पहले ब्रह्मा बाबा जब थे तो साकार की पालना, जो दादी के तन में बाबा आए इतने 50 वर्ष तक है ना तो हम सबको आकारी पालना मिली, ब्रह्मा बाबा आकारी शिव बाबा निराकार साथ में आकर के हम सबकी पालना कर रहे थे। अभी उसमें लिखा है कि सूक्ष्म पालना माना निराकारी दुनिया की पालना, अब हम कितना उड़ सकते हैं और कितना समर्थ बन गए हैं। पहले साकार में थे तो देह भान ग्रसित होने के कारण से बाबा ने एक एक चीज सिखाए है और स्थिति बना के आकार ही बनाया हम सबको। तो आकार ही बनते बनते अब हम बीज रूप स्थिति में बिंदी रूप में टिकना शुरू किए तो निराकारी पालना मिलना शुरू हो गई। तो फिर उसके बाद में 21 नंबर में प्रकृति और प्रकृति के साधन द्वारा पालना हो रही है हम सबकी। प्रकृति ने कितनी सारी चीज हम सबको उपलब्ध कराया है। तो 22 में विज्ञान के साधन द्वारा पालना हो रही है आज विज्ञान के साधन द्वारा। पहले एक भाई सुना रहे थे कि एक मुरली लेने के लिए 80 किलोमीटर दूर गए तो दीदी ने कहते हैं कि एक मुरली दिया तो एक महीना तक रगड़ते रहे उसको पूरा स्वरूप में उतरने तक। तो फिर अभी तो नेट में जाकर ऑन करते एक महीना की मुरली तो 10 सेकंड में आ जाती है। तो विज्ञान के साधन के द्वारा तो विज्ञान के द्वारा पालना इस साधन द्वारा भी हम सबकी पालना हो रही है। बाबा के घर में चीज उपलब्ध कराए जाते हैं उसके द्वारा। और उस समय तो जो अभाव होता था तो उसी को हम करते थे। अभी बाबा ने हमको खुला छुट्टी दिया है तो मुरली को कितना बार पढ़ के अपनी अवस्था बना सकते हो। अभी तो हम अपने ऊपर छोड़ दिया बाबा ने। पहले ये सब चीजें होती नहीं थी तो करना पड़ता था। अभी तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। जैसे माँ बाप भी छोटे बच्चे होते हैं तब तक तो माँ बाप ध्यान रखते हैं क्या करना चाहिए कैसा करना चाहिए इसकी नमज को देख करके वो सब करते थे। जब बड़े होते हैं तो माँ बाप भी उनको आजाद कर देते हैं जो करना है तुम्हारे हाथ में है। तो फिर 23 में निकाले कि जो स्थिति अवस्था के द्वारा जो व्यवस्था बनी है ना उसके द्वारा हमारी पालना हो रही है। तो फिर स्थिति अवस्था के द्वारा ही तो आज हम पार्टिकल में आत्माओं को देखते हैं जो धारणाएं मूर्त आत्माएं हैं उन्होंने जो जीवन में इस प्रकार की फाउंडेशन डाली है तो उनकी प्यार पालना शुभ भावना है ना प्रैक्टिकल में मूर्त रूप से हम देखते हैं। तो 24 में कि सत्य की दुनिया स्वर्णिम दुनिया की स्मृति द्वारा हमारी पालना हो रही है। उसके बाद में अमृत वेला बाप दादा से मिलन मना करके बाप दादा के मिलन के द्वारा हमारी पालना हो रही है। तो लास्ट जो 26वां पॉइंट है कि ब्राह्मण परिवार अथवा ब्राह्मण संगठन के द्वारा एक आपस में सबकी पालना हो रही है। तो तभी हम वरदानी मूर्त बनने में हम सबको इन सारी बातों का सपोर्ट मिला है। इन सभी बातों के आधार से हम अपने जीवन को महान बना रहे। तो हर दिन इन सबको थैंक्स तो देनी पड़ेगी क्योंकि हमने इतनी सारी पालना प्यार स्नेह पाया स्थिति का अनुभव किए अच्छी अवस्था बनाई है। तो दिल से सोते और सहज निकलता ही है कि इन सब आत्माओं की बदौलत हम सब पल रहे हैं। ऐसे तो बाबा इन सब बातों से हम सबको कहते हैं कि तुम्हारा भाग्य था भाग्य के कारण से ऐसा हुआ है। लेकिन ये भी हम सब इस बातों को अगर पकड़ते हैं तो बुद्धि हैंग हो जाती है और हमारी दिल से जो शुक्रिया निकलना चाहिए थैंक्स निकलना चाहिए ये ब्रह्मांड में फैलने वाली चीज है। जो खुशी से हम दिल से शुक्रिया करते हैं थैंक्स देते हैं बधाई देते हैं हम हैंग नहीं होते उस समय हमारा दिल हमारा हार्ट ओपन होता जाएगा और सबके साथ हमारा लिंक सूक्ष्म रूप से जुड़ जाती है। इसीलिए एक आपस के सपोर्ट बिना कुछ नहीं होता है। इसीलिए बाबा ने संगठन का वैल्यू रखा है संगठन का महत्व बताया है। तो उसके बाद में हम सब जो 25 पॉइंट हम सब देखते हैं वरदानों की जो दैते लगे होते हैं हर एक ने कमरे में भी लगाए होते हैं और दिन में एक आध बारी एक बार भी नजर पड़ जाता है तो शक्तिशाली जो पॉइंट उसमें वरदानों के रूप में बाबा ने दिए हुए वरदान है तो उसमें हमारा नजर पड़ जाए। इसीलिए चारों तरफ दीवारों में स्लोगन लगाना वरदान लगाना क्यों जरूरी है क्योंकि अच्छे विचार चलते रहे, अच्छे संकल्प चलते रहे, और हमारा जो संकल्पों का स्पीड कभी कभी व्यर्थ नेगेटिव की तरफ बढ़ता है, तो उस चीजों को देखते हैं तो फुल स्टॉप लगाने में हमको शक्ति मिलती है, सामर्थ्य आती है अंदर से, और माया के जो ट्रैक से हम निकल करके बाप के ट्रैक में आने में सपोर्ट मिलता है। इसीलिए चीजें चारों तरफ हम जहां भी जाते हैं, चाहे सेंटर में, चाहे मधुबन में, किधर भी हम होते हैं, तो ये चीजें मिलता ही है। तो ये 25 पॉइंट जो है हम सबने याद भी किए होंगे, तो मैंने थोड़ा बहुत उसको याद करने की कोशिश की है, कहीं बीच में मिस्टेक हो जाता है तो आप सब भी सपोर्ट करके इसको सफल कराएं, इसको हम जैसे कि फलीभूत करेंगे। तो बाबा ने जो वरदान में, तो बाबा कहते हैं कि जो पहला नंबर में है, कि बाबा कहते हैं कि हम सबको जैसे बाप इस धाम को साक्षी होकर के देखता है, ऐसे तुम भी देखो तो बाप समान बन जाओगे, बाप समान बन जाओगे, है ना। ये एक नंबर में है, जैसे कि ज्ञान का सार है इसमें, सर्वोच्च अवस्था है साक्षी दृष्टा का। तो उस दिन नरेश भाई कुन सी बातों का जो रेफरेंस दे रहे थे, कि सब कुछ दुनिया में तो पहले से ऑलरेडी फिक्स है, लेकिन हम साक्षी होकर के नहीं बैठ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इंटरफेयर करेंगे ही, कहीं ना कहीं हम अपने बुद्धि चलाने लग जाते हैं, तो सिस्टम डगमग होने का चांस बहुत होता है। तो बाबा तो इसीलिए साक्षी है कि इसमें बाबा ने एक पॉइंट में बताया है, इस बीच में आएगा दूसरा में, दो नंबर पॉइंट है कि सुस्थिति शक्तिशाली है, तो तुम्हारा सुस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति बदल जाएगी, तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकेगा। सुस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति बदल जाएगी, तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। तो तीन नंबर में है कि तुम मेरी याद में रहोगे तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा, तुम मेरी याद में होंगे तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। तुम श्रेष्ठ, चार नंबर में, तुम अपने श्रेष्ठ पोजीशन में रहो तो कोई भी अपोजिशन नहीं कर सकता है। तो श्रेष्ठ पोजीशन का कितना बड़ा वैल्यू है, बाप रे। हम सब इस अवस्था में अगर पहुंच जाए अपनी स्थिति में, तो हमें तो एक ही संकल्प कितना बड़ा काम करता है। तो फिर पांच नंबर में कि जैसे कि पांच नंबर में जो चीजें बीच में रुक जाती है, बाद में उसको रिवाइज कर, बाबा ने बोला कि तुम अपने श्रेष्ठ सोमान में रहोगे तो हर गुण और शक्तियों का नशा इमर्ज रूप में रहेगा। तो श्रेष्ठ सोमान, तो छह नंबर में कि बाबा ने बोला कि नहीं, उसको पीछे रखा है, बीस के पीछे। ये बीस जो आगे हम लोग ने जो लिस्ट है ना उसको, तो ठीक है, उसको हम बाद में, उसको पीछे हम बता देंगे। उसमें एक केस नंबर में रखा है उसको, तुम्हारा सोचना देखना संपूर्ण बनने का आधार है, और तुम्हारे दृष्टि से आत्माएं और प्रकृति पावन बन रही है। तो छह नंबर में होगा, है ना। अच्छा, तो इसमें ये छह नंबर, वो तो इक्कीस में है, तो ये छह नंबर में जैसे कि अच्छा ठीक है, अभी छह नंबर में नहीं, वो आगे ठीक है, अभी आठ नंबर से कर देता हूँ, दो नंबर बीच में बाद में याद आ ही जाएगी। तो बाबा ने बोला कि जब तुम अपने आप को संपूर्ण रूप से जान जाओगे तो संपूर्णता को प्राप्त कर लोगे। तो नौ नंबर में कि बाबा ने बोला कि जिम्मेवारियों के ऊपर है कि तुम अपने को इसमें एक बाबा ने वहां आगे भी बताए हैं जिम्मेवारियां। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिपीट कर देंगे क्योंकि लंबे लंबे पॉइंट थे इसमें, है ना। हाँ, क्योंकि ये लंबे थोड़े होने के कारण से छह नंबर में कि ज्ञान सूर्य से शक्ति लेकर के सबको देना, ये मुख्य सेवा है। मुख्य सेवा है और सेवाएं तो निमित्त मात्र है। ज्ञान सूर्य से शक्ति लेकर के सब आत्माओं को देना मुख्य सेवा है और सेवाएं तो निमित्त मात्र है। तो बाबा ने 7 नंबर में बताए कि वरदान है स्वभाव में सरल और पुरुषार्थ में अटेंशन होगा तो नंबर 1 में आ जाएंगे। हाँ, पुरुषार्थ में अटेंशन होगा तो नंबर 1 में आ जाएंगे। 8 नंबर तो बताए, है ना। उसमें 9 नंबर में तुम अपने को निमित्त समझ करके चलो तो जिम्मेवार मैं हूं, है ना। तुम अपने को निमित्त समझ करके चलो तो जिम्मेवार मैं हूं। यह स्मृति भी सब जिम्मेवारियों से हल्का कर देगी। ये स्मृतियां भी सब जिम्मेवारियों से हल्का कर देगी। सेवाएं तो तुम्हें बिजी रखने के लिए है। 10 नंबर में सेवाएं तो तुम्हें बिजी रखने के लिए हैं। तुम्हारा लक्ष्य तो स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का है। हाँ, तो 11 में है कि याद का बल उन बच्चों को मिलता है जो अनिष्ट है और बाप के सच्चे बाप के साथ सच्चे होकर के चलते हैं। तो अनिष्ट और ईमानदार बच्चों को अच्छा। तो 12 में है जितना बाप की याद में रहेंगे तो बाप के साथ का हुआ बाप की छत्रा छाया का अनुभव होता रहेगा। तो 13 में है जो त्यागी तपस्वी बच्चे हैं उनके आगे भाग्य उनके आगे पीछे दासी के समान आएगा। जो त्यागी तपस्वी बच्चे हैं भाग्य उनके आगे दासी के समान आएगा। जो त्यागी और तपस्वी मूर्त। तो 14 में है तुम सुख के सागर के बच्चे हो, संकल्प में भी तुम्हें दुख की लहर नहीं आ सकती। तो 15 में तुम कल्याणकारी बाप के बच्चे हो तो स्वप्न में भी तुम्हारा अकल्याण नहीं हो सकता है। तो 16 में बाबा जो वरदान दे रहे हैं कि 16 में भाग्य विधाता ने तुम्हारा भाग्य बनाया है, तुम्हारे भाग्य का निर्माण स्वयं भाग्य विधाता ने किया है, भाग्य विधाता ही तुम्हारा हो गया है, भाग्य विधाता ही तुम्हारा हो गया है। तो 17 में ही जो बच्चे परमात्मा प्यार में खोए रहते हैं उन्हें संसार की कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता है। तो 18 में जो बच्चे बाप के नैनों में समाये रहते हैं उन्हें उन पर माया की नजर पड़ नहीं सकती। तो 19 नंबर में सोमान की सीट पर सेठ रहने वालों का जिम्मेवार मैं हूं। जो नहीं रहते हैं उनके स्वयं जिम्मेवार है। तो 20 नंबर में तुम बाप की याद में रहो तो प्रकृति विनाश के समय तुम्हारे समीप आकर के 1 फुट की दूरी पर रुक जाएगी। तो 21 में तो हमने बताए थे, है ना। तुम्हारा सोचना देखना देखना सोचना संपूर्ण बनने का आधार है। तुम्हारी दृष्टि से आत्माएं और प्रकृति पावन बन रही है। तो 22 में बाबा ने बताया कि बाप है ना, बाप निमित्त समझ करके निश्चिंत रहते हैं और बच्चे जिम्मेवार समझ करके परेशान रहते हैं। 22 नंबर तो 23 में जो सर्वस्व त्यागी है, जो सर्वस्व त्यागी होंगे, सरलता और सहनशीलता के गुण सोते आ जाएंगे। 23 है ना, 23 में। तो 24 में कि 24 में बाबा ने वरदान दिए हैं, इसमें तुम ज्ञान सूर्य के मास्टर माना, तुम ज्ञान सागर के बच्चे हो, तुम्हारे ज्ञान से संसार को रोष, तुम ज्ञान सागर के बच्चे हो, तुम्हारे रोशनी से संसार को रोशन करेंगे और तुम्हारे जीवन में एक सेकेंड भी अंधकार हो नहीं सकता है। तो 25 नंबर है ना, 25 नंबर में उसमें बाबा ने क्या बोला, बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकेंड में वतन में पहुंचकर सर्वशक्तिमान बाप से सर्वशक्तियों की किरणें लेना ये शक्तिशाली योग है। वतन में पहुंच करके बाप की किरणें लेना ये शक्तिशाली योग है। तो इतने सारी जो वरदान की जो बातें हम सब ने सुने, ऐसे तो बाबा हम सबको 365 दिन में 365 वरदान देते हैं, लेकिन फलीभूत हम कितना कर पाते हैं, साकार में कितना उतार पाते हैं, यह हमारा सबसे बड़ी तपस्या है और हमारी साधना है। तो बाबा तो कैसे कैसे, जैसे कि वरदान में जैसे कि नवीनता इतना लगता है कि कोई व्यक्ति, तो बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले के पास कोई साधु संत महात्माएं होते हैं, उनके पास तो 2-3-4 ही वरदान होते हैं ज्यादा से ज्यादा। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, इस प्रकार के वरदान होते हैं। लेकिन धनवान भी आ गया। तो इतनी सारी जो बाबा तो हम सबको देखे, हर दिन इतनी सारी जो वरदान की जो पॉइंट्स होते हैं कि तो ये सब, तो इसको हम कहाँ तक उतार पाए हैं और कहाँ तक उतार पाते हैं, ये हमारे ऊपर है। बाबा ने बोला खुले आम छुट्टी है, 3-4 दिन पहले की जो मुरली में वरदान में बाबा ने बोला था, खुल्लम खुल्ला भंडारा खुला है ना, कोई ताला चाबी नहीं है, और जो जैसा करना चाहे, जो जैसा बनना चाहे। एक में तो बाबा ने बोला कि अष्टरतन में आने चाहते हो, अमृत बेला के लिए बोला है, वरदान है ना, भंडारा खुला है, अष्टरतन बनना चाहते हो, 108 बनना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो तुम्हारे हाथ में है, ताला चाबी नहीं है। कोई सिक्योरिटी नहीं है वहां पर। तो इसीलिए बाबा इस वरदान के जरिए इस धरती में हर दिन नए वाइब्रेशन है ना, शक्तिशाली वाइब्रेशन, हमारे बुद्धि हर दिन तरोताजा हो जाती है, तो वाइब्रेशन भी वैसे निकलते हैं। और एक ही चीज में जकड़ जाते हैं तो मन बुद्धि जैसे कि मुरझा जाते हैं। इसीलिए बाबा तो जैसे संसार में ऐसी नवीनता, जैसे कि दुनिया में कहते हैं कि 60 साल के बाद में तो आदमी जैसे ठंडा पड़ जाता है, बुद्धि चलना बंद हो जाती है, लेकिन वर्मा बाबा ने पूरे जो 30-32 साल मुरली चलाए हैं, तो हर दिन बाबा नवीनता चाहते हैं। तो ये 60 के बाद तो हम सब यूथ हो जाते हैं, युवा बन जाते हैं और अनुभव के हिसाब से बच्चे बन जाते हैं। और हमारा है ना नवीनता के आधार से भी हम सबकी पालना हो रही है, नवीनता के आधार से भी हम सबकी पालना हो रही है। इसीलिए हम सबको इतनी सारी बातें बाबा ने वरदान के रूप में दे रहे हैं, तो वरदान का फायदा लेना और हम कैसे अपने को अपने स्वरूप बना सकते हैं। आगे जाकर के बाबा ने बोला है कि यह समय आएगा तो एक एक समय जो हमने गवाए हैं वो भी याद आएंगे, तो उस समय लगेगा कि उस समय पीछे की याद आएगी कि उस समय हम इतना समय वहां जाकर के यह करके ऐसा करके बर्बाद किए। उस समय को अगर हमने अच्छी जगह पर अच्छी समय पर काम में लिए होते तो आज हमें यह हालत यह स्थिति नहीं होती और हम उस समय इस अवस्था में होते। इसीलिए मुख से भगवान का वरदान निकालना है, यह भी वरदान है, लेकिन हम खुद बन करके निकालते हैं तो सबको फायदा है, स्वयं को फायदा है, वातावरण वायुमंडल सोते हमारे साथ कुछ न कुछ लिंक में जुड़ी रहती है और वहां भी वाइब्रेशन पहुंच रहा होता है, तो ये वाइब्रेशन से और आत्माओं को भी कनेक्शन में लाना, शक्ति भरना, पावर भरने का काम कर रहा होता है। इसीलिए कहते हैं कि हाई एनर्जी सदा लो एनर्जी की ओर फ्लो होता है, जो शक्तिशाली आत्माएं नहीं है उनके तरफ जो उससे शक्तिशाली आत्माओं का सपोर्ट कहीं ना कहीं उसको मिल रहा होता है। बोलने की जरूरत नहीं, मैं दे रहा हूं कहने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये साइंटिफिक रीजन है। इसलिए हम यहां बैठ करके हमारे पास इतनी शक्ति है, इतना ऊर्जा है, एनर्जी का अनुभव करते हैं, वो कहीं ना कहीं बाबा यूज कर रहा होता है। लेकिन बच्चों को अगर पता चल जाता है ना तो अहंकार आने का चांस होता है, अहंकार आने का चांस होता है, क्योंकि बाबा ने दो तीन दिन भी कल ही बोला है, तो मास्टर भगवान हो, तो मास्टर भगवान माने कितनी शक्ति होगी, लेकिन वो शक्ति को प्रैक्टिकल में अगर हमें एहसास होने लग जाए तो हम कुछ भी कर देंगे किसी के लिए भी, क्योंकि दुरुपयोग होने का चांस होता है, क्योंकि हर व्यक्ति सर्व विकारों से मुक्त नहीं है, कोई काम से, कोई क्रोध से, कोई लोभ से ग्रसित है, तो कहीं न कहीं सारे दिन में जो साइड सीन दिखाई देगा वो सीधा करने में सीधा लो लग जाएगा। तो शक्ति का दुरुपयोग होने के कारण से बाबा अपने बच्चों से काम तो ले रहा है लेकिन बताता नहीं कि तुम्हारी शक्ति इतना महीने लेकर के काम में लगाया है, कभी नहीं बोलेगा। नहीं तो कुछ भी कर देगा वो, तो वरदान को इस्तेमाल भक्ति मार्ग में जो अकासुर बकासुर रावण जो कुंभकर्ण हुए है ना, इन्होंने वरदान को दुरुपयोग करके ऐसे हुए है। इनका इसीलिए है क्योंकि वरदान भगवान से ही मिले हुए वरदान थे उन सबको भी, लेकिन उन्होंने साम्राज्य स्थापित करने के लिए, स्थापना करने में अपना देह अहंकार दिखाने के लिए उन्होंने यूज किए। इसीलिए आज बाबा ने यह भी बोला है कि देवता और असुरों की लड़ाई हुई नहीं थी, और बाबा ने यह भी बताया कि जो आज भी वरदान में बोला है कि जितना भी अवगुणी वाला आत्मा क्यों न हो है ना, उसके लिए भी समान दृष्टिकोण रखा बोला बाबा ने, रखो राम की भावना रखो। क्यों? क्योंकि बाबा ने उस सीरियल में दिखाया है कि असुर से भी भगवान उतने प्यार करता है जितना देवता से करता है, इसीलिए भगवान सबसे प्यारा है। इसलिए हम सब भी संसार के बीच में सब कुछ देखते हुए भी समान दृष्टिकोण रखने की हिम्मत आ जाए, ये वरदान का प्रमाण है। इसलिए हम सबको इस बात में ध्यान रखते हुए अपने आप को इतना वरदानी मुहूर्त बना सके, यही बाबा हम सबके ऊपर उम्मीद रखते हैं। अच्छा, ओम शांति। सब भेद ये खोलती है।
की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए, वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने वाले। ज्ञान सुनाने वाले वरदान।